बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा पंचतत्वा जय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद हे कै गौर हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल नितय गौर हरि बोल
श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री श्री पंच तत्व गौर निताय की जय पतिता पावन श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। तो आज का हमारा श्लोक संख्या है तीसरे स्कंद के सातवें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक ले रहे हैं, क्योंकि 27वें में तात्पर्य नहीं है, तो हम पहले 27वां पढ़ेंगे और फिर 28वां हम लोग दोहराएंगे सब साथ में मिलकर। 27वां श्लोक है, त्रियक मानुष देवानाम सरीसृप पत्रिणानाम वदम न सर्ग संविहम गर्भ स्वेद द्विज उदिदाम। इसका अनुवाद है, कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत यथा मन मन वेतर मानव भ्रूण से उत्पन्न पसीने से उत्पन्न द्विजन्मा तथा पौधा एवं शाखों को भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियां तथा उप विभाजनों का भी वर्णन करें। अब हम 28वां श्लोक की चर्चा करेंगे, सभी दोहरा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराष्ट्रीमद्भागवतम की जय। गुणा अवतारो विशस्य सर्ग स्थित अपयम आश्रयम सृजत श्रीनिवासस्य व्याचश्व उदार विक्रमम। गुणा अवतारो विश्वस्य सर्ग स्थित अपय आश्रयम सृजत श्रीनिवासस्य व्याचश्व उदार विक्रमम। गुणावतारो विश्वस्य सर्गस्थित अप्य आश्रयम् सृजतां श्रीनिवासस्य व्याचश्व उदार विक्रमम् गुणावतार विश्वस्य
श्रीनिवासस्य चक्रोदार विक्रमम्
इसका अनुवाद पढ़ेंगे, सभी दोहरा सकते हैं। कृपया प्रकृति के गुण अवतारों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तथा उनके उदार कार्य कलापों का भी वर्णन करें। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की। यद्यपि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर जो कि भौतिक प्रकृति के तीन अवतार हैं, विराट जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के प्रमुख देव हैं, किंतु वे अंतिम अधिकारी नहीं हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण चरम लक्ष्य या समस्त कारणों के कारण हैं, वे आश्रय हैं अर्थात समस्त वस्तुओं के अंतिम विश्राम हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाते शब्दकांतिकं वंदेहं श्री गुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णा पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंचा कल्पतरूपश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर तरीके से दोनों श्लोक 27 और 28वें के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने जो बताया उसको योग्यता ना होते हुए भी अपने शब्दों में रखने का प्रयास करूंगा, तो भी त्रुटि हो उसके लिए मुझे क्षमा करेगा। तो यहाँ पर बताया गया 27वें श्लोक में कि जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत यथा मन वंतर मानव भ्रूण से उत्पन्न पसीने से उत्पन्न द्विजन्मा तथा पौधा एवं शाकों को भी वर्णन करें। तो यहाँ पर ये जो है विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से, तो वो संवाद चल रहा है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न इस अध्याय का नाम है। तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से अनेकों प्रश्न पूछे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मैत्रेय जी को ये दिया था कि आप जाकर विदुर को ये ज्ञान प्रदान करिएगा भागवतम का, इसलिए अनेकों प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। तो प्रश्न पहले उन्होंने पूछा कि किस प्रकार से अनेकों जीव उत्पन्न होते हैं, और फिर दूसरे प्रश्न में उन्होंने पूछा कि किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे भी ऊपर कोई ईश्वर या जिसका आश्रय लेने योग्य है, समस्त वस्त्रों के अंतिम विश्राम है। तो हम अधिकतर भौतिक जगत में जब चर्चा करते हैं तो लोग सबको एक बराबर मानते हैं, और जानवरों को तो मानते हैं कि उनमें जीवात्मा ही नहीं होती है। तो कोई भी वस्तु जो छोटे से बड़ी होती है इसका मतलब उसके अंदर जीवात्मा है, चाहे वृक्ष की आप बात करें। तो जड़ वस्तु जो है वो बड़ी नहीं होती है, जैसे पत्थर है काफी समय तक एक स्थान पर रखा रहे तो वो बढ़ता नहीं है। तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए अपने बुद्धि से कि जिस चीज में बढ़ोतरी हो रही है, पहले छोटी है फिर थोड़ी सी बड़ी हो रही है फिर कुछ उत्पन्न कर रही है फिर बाद में बूढ़ी हो रही है फिर चली जाती है संसार से, तो ऐसी वस्तु जैसे वृक्ष है वो पहले छोटा था बीज था फिर बड़ा हुआ फिर फल प्रदान किए उसको समय बाद फिर बूढ़ा वृक्ष हो गया और फिर वृक्ष मर जाता है या फिर काट दिया जाता है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जिसको कहते हैं कि 84 लाख प्रकार के वस्त्र हैं। जैसे एक जीवात्मा है उसको 84 लाख प्रकार के वस्त्रों की आपको चॉइस दी गई है, योग्यता आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन के अंदर ही चूज करने की अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप चूज कर सकते हैं या तो भौतिक शरीर त्याग करके आध्यात्मिक शरीर धारण करें या तो फिर वापस उसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में जाकर क्या करें वही भौतिक शरीर धारण करें। तो इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से हमारे भागवतम श्लोक में आया है ना जलजा नवलक्षाणी, भागवतम में वर्णन आता है कि 9 लाख प्रकार की तो जल की योनियां हैं, तो वही यहाँ पर भी वर्णन करके वो पूछ रहे हैं कि कितने प्रकार की योनियां हैं कहाँ कहाँ से जीव उत्पन्न होते हैं। 20 लाख प्रकार के वनस्पतियां हैं, 11 लाख प्रकार के कीट पतंगे हैं कीड़े, और 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 30 लाख प्रकार के पशु हैं जो 4 पैरों पर चलते हैं, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो मनुष्यों में भी कितने प्रकार के वस्त्र हैं आप ले सकते हैं, अफ्रीकन वस्त्र ले सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार, जो मांसाहार का सेवन करते हैं उनको अफ्रीकन वस्त्र दिया जाता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में बता रहे हैं कि अफ्रीका में एक ऐसा गाँव है जहाँ पर सारे के सारे लोग, मतलब छोटी सी कम्युनिटी है, बहुत छोटी सी समाज है छोटा सा, उसके अंदर बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढा जाता है कौन सबसे ज्यादा बुजुर्ग है। तो हर साल उनका न्यू ईयर फेस्टिवल बनाने का तरीका ऐसे है कि बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढते हैं और उसके बाद सारे उसमें एज देखते हैं सबसे ज्यादा एजड कौन सा व्यक्ति है, पता चला इसकी आयु है 90 वर्ष या 100 वर्ष, तो फिर बाकी की जो कम्युनिटी है वो भाले लेके और सर्कल बना ले गए और फिर हु हा हु उसको भाला मार देंगे वो व्यक्ति मारा जाएगा और फिर उसको फ्राई करेंगे जलाएंगे और फिर पूरी सोसाइटी बैठ के उसके अंश खाएगी। तो कई सारे लोगों से पूछते हैं आप भगवत धाम नहीं जाना चाहते हैं, इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र से नहीं बचना चाहते हैं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत खुश हैं, वी आर एंजॉइंग, हम बहुत आनंद में हैं संसार में। देखें तो वो भी समझे नहीं है, अगला जन्म बोले कोई बात नहीं मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तो अभी कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा था लेटेस्ट, अभी वो सलमान खान के ऊपर कोई प्रश्न पूछ रहे थे, अभी मैं पीछे क्लास दे रहा था तो उन्होंने बोला कि किस प्रकार से आप ये कर्मा के ऊपर डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सी योनि मिलेगी। तो मैंने बोला कि जिस प्रकार से आप अगर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करते हैं आज के दिन तो 5 साल बाद आप क्या बन के निकलेंगे, डॉक्टर या इंजीनियर, और अगर इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो 4 साल बाद आप लॉयर बन के निकलेंगे, क्या बन के निकलेंगे, इंजीनियर। इसी तरह से आज का जो आपका चुनाव है वो आगे आने वाला आपका रिजल्ट है, फल है आपका। तो इस तरह से उन्होंने पूछा कि उन्होंने तो बहुत गलत काम किया, किसी का मर्डर किया मार दिया, और स्त्री संघी भी है, बहुत स्त्रियों का संघ करते हैं, और फिर साथ में एक सोसाइटी भी बनाई है बींग ह्यूमन, और उसमें वो पैसे भी देते हैं डोनेशन भी देते हैं, अपनी कमाई का 75% हिस्सा जो है वो 75% दे देते हैं, दान में दे देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या योनि मिलेगी? अब ये हम जज तो नहीं है जो डिसाइड करें कि कौन सी योनि मिलेगी, जज तो भगवान है, लेकिन फिर भी अगर कर्मा फिलॉसफी से देखें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि कैसे, मैंने कहा देखिए अच्छे कर्मों के कारण वो अच्छे घर में जन्म लेंगे, लेकिन अच्छे घर का मतलब ये नहीं कि कौन से शरीर प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि बहुत अच्छे घर में उत्पन्न हुए क्योंकि उन्होंने बहुत दान पुण्य किया है, तो बड़ा घर मिल गया, मान लीजिए टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, ऐसा घर मिल गया, हाँ सांगवीज, ऐसा घर मिल गया उनको, और उस घर के अंदर जीवात्मा बन गए कुत्ता, वो भी तो होते हैं उनके घर में, और स्त्री संगी है तो उनके घर में जो युवा स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी गोदी में रहेंगे सदा, तो सारी की सारी इच्छा पूर्ण हो गई, उनकी बड़ा घर भी मिल गया, योनि भी मिल गई और साथ में स्त्री भी मिल गई, लेकिन कौन सा मिला वो भगवान ने डिसाइड करना है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली आज के हम कर्मों को कैसे अपने बदलें ताकि हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो सके और वापिस इस जन्म मृत्यु चक्र में ना आना पड़े। लोग भ्रमित हो जाते हैं, जैसे चावल के ढेर में श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, चावल के ढेर में से अगर बिच्छू निकलता है तो लोग समझते हैं कि चावल उसका उत्पन्न करने वाला है बिच्छू का, लेकिन एक्चुअली चावल से नहीं उत्पन्न हो रहा है, वो किससे हो रहा है, बिच्छू अपने ही अंडे से उत्पन्न हो रहा है जो कि चावल के ढेर में किसी मादा ने वहां पर छोड़ा था। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि जो संसार में जितनी भी जीव आत्मा है ये भगवान के द्वारा उत्पन्न होती है और कोई कारण नहीं है। भगवान कहते हैं पुरुषम प्रकृति स्थितो ही भोगते प्रकृति जना गुणान कारणम गुण संग अस्य सद असद योनि जन्मसु। सद असद योनि, अच्छी योनि और बुरी योनि कैसे प्राप्त होती है, कारणम गुण संग अस्य, जिस प्रकार के गुणों का संग करेंगे वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। सत्वगुणी संग करेंगे तो सत्वगुणी शरीर मिलेगा, रजोगुणी संग करेंगे तो रजोगुणी मिलेगा, तमोगुणी करेंगे तो तमोगुणी मिलेगा, लेकिन अगर भक्तों का संग करेंगे तो क्या मिलेगा, दिव्य शरीर प्राप्त होगा, ट्रांसेंडेंटल बॉडीज। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि आज के समय में आज ही इंपॉर्टेंट है कि हम कृष्ण भावना भवित को जितनी जल्दी हो सके उतना अपना लें। तो कई प्रकार की योनियां हैं, जैसे बताया गया है स्वेदज, अंडज, जरायुज। तो स्वेदज जो है ये पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव होते हैं, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, जरायुज और किन्नर, यक्ष, बहुत प्रकार की योनियां हैं, लेकिन आप किसी भी योनि में चले जाएं जब तक आप दिव्य शरीर प्राप्त नहीं करेंगे आप जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बच सकते। वो लोग बोलते हैं, एक को हम प्रचार कर रहे थे, वो बोले कि अच्छा तो है बड़े घर में पैदा होंगे तो क्या प्रॉब्लम है, ज्यादा पैसे वाले घर में पैदा होंगे क्या प्रॉब्लम है, आज जो दुख देख रहे हैं वो दुख नहीं मिलेंगे। तो जानते नहीं कि असली जीवन का दुख क्या है, असली जीवन का दुख है जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी आदि दैविक आदि आत्मिक और आदि भौतिक कलेश। तो इस प्रकार के जो ये सात दुख हैं, ये व्यक्ति कितना भी ऊपर चला जाए ब्रह्म लोक में भी जाएगा ना तो भी उसको वापस आना पड़ेगा। आब्रह्म भुवनान लोकम पुनरावति अर्जुन, ऊपर ब्रह्म लोक तक जाने के बाद भी अर्जुन लोगों को वापस आना पड़ता है, स्वर्ग लोग चले जाएंगे पुण्य करके, तो शिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, कितने भी पुण्य करेंगे जैसे ही बैंक बैलेंस खत्म तो वापस मृत्यु लोकम विशंति। तो इस संसार में बार बार आना पड़ेगा, और फिर इसलिए बेहतर है कि आज ही हम चुनाव करें कि सब कुछ त्याग करके भगवान के शरण ग्रहण करें। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षिण प्रकृति सुयते साचराचरम हेतानुने कौन्तुवे जगत विपरीवर्तते। अध्यक्षता का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट, इन माय प्रेसिडेंटशिप, बोलते मंदिर के अध्यक्ष हैं, टेंपल प्रेसिडेंट। तो मंदिर जिस तरह से अध्यक्ष हैं इसी तरह भगवान कह रहे हैं इस प्रकृति का अध्यक्ष मैं हूं, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। तो इसलिए अगर हम इस प्रकृति को छोड़कर आध्यात्मिक प्रकृति में जाना चाहते हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अध्यक्ष की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, बाकी किसी की नहीं। जैसे एक बार तमाल कृष्ण महाराज, जब प्रभुपाद जी ने उनको टेंपल प्रेसिडेंट बनाया, टेंपल कमांडर अमेरिका में मंदिर में, तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है सोचकर कि किस प्रकार से मैं अपने को अहंकार रहित करूं, क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत अहंकार आ जाएगा जब मैं मंदिर का अध्यक्ष बन जाऊंगा, तो मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार अहंकार रहित रहूं, क्योंकि जैसे ही कोई पोजीशन या गद्दी या डेजिग्नेशन हमको प्राप्त होता है वैसे ही हम क्या हो जाते हैं, पफ्ड अप, फूल जाते हैं। तो एक बार सुबक स्वामी महाराज बता रहे थे, पफ्ड अप जो है ना खाली कौन सी चीज होती है, पूड़ी और मुड़ी, पूड़ी और मुड़ी को पफ अप होने के लिए, फूलने के लिए खाली पूड़ी है उसको फूलने देना चाहिए और मुड़ी जो लाई हम खाते हैं उसको फूलना चाहिए, भक्तों को नहीं फूलना चाहिए। तो किस प्रकार नहीं फूले हैं अपनी पोजीशन को पाने के बाद भी, किसी को मंदिर का अध्यक्ष बना दिया, किसी को मंदिर का टेंपल कमांडर, किसी को जनरल मैनेजर, किसी को सीनियर प्रीचर, किसी को दिस दैट, बहुत सारी चीजें, और मैट्रिक भौतिक जगत में भी हमें बहुत सारे इस प्रकार के डेजिग्नेशन मिलते हैं। तो भक्त कैसे समझे? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि महाविष्णु जो है वो कर्ण सागर में लेटे हुए हैं, जिनको कर्णोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं, और उनके शरीर से अनेकों 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 ब्रह्मांड उनके रोमकूप से प्रकट होते हैं, और अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों के अंदर एक ब्रह्मांड है जिसमें हम लोग विराजमान है, जिसमें हम रहते हैं, इसके अंदर गर्भोदक्षाय रूप में विष्णु विराजमान होते हैं, तभी सृष्टि की रचना शुरू होती है, क्योंकि उनकी नाभि कमल से एक कमल निकलता है जिसपे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी जो है अपने नेत्रों से, अपने भ्रगुटी से रुद्र मतलब शिव को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से वो उनको बता रहे हैं, और जो कमल की नाल है स्टेम ऑफ द लोटस, उसके अंदर 14 भवन 14 प्लैनेट हैं, ब्रह्मलोक, तपलोक, सतलोक, स्वर्गलोक, पितृलोक, पृथ्वीलोक, सुतल, तलातल, पताल, रसातल, इस प्रकार से 14 लोक हैं। तो आप इन्हीं लोकों में घूमने की सोच रहे हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा भी है। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंच तत्व गौर निताय की। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड ये है, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा है। कई कई ब्रह्मांडों में अनेकों अनेकों ब्रह्मा है जिनके 10 मुंह भी हैं, 1000 मुंह भी हैं, 64 मुंह भी हैं। एक बार ऐसे हो गया था, ब्रह्मा जी को भी अपनी गद्दी का क्या हो गया, घमंड हो गया। तो ब्रह्मा जी मिलने गए भगवान से, तो उन्होंने बोला, गार्ड्स जो खड़े थे, जय विजय, बोले किससे मिलना है, बोले भगवान से मिलने आया हूँ, मेरे कुछ पोजीशन में प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए मंदिर में कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधे जाते हैं टेंपल प्रेसिडेंट के पास, या भौतिक सृष्टि में कोई प्रॉब्लम होती है तो बॉस के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्योंकि प्रथम जीव है तो किसके पास जाएंगे, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, गोविंद का भजन करते तो उन्हीं के पास जाएंगे। तो चले गए, तो भगवान ने बोला जाओ पूछ के आओ कि कितने मुख वाला ब्रह्मा आया है। वो गए तो गार्ड्स आके बोले, बोल रहा है चतुर्मुखी ब्रह्मा हूं। तो बोले, तो पहले तो बोला ब्रह्मा, बोला कि और कोई ब्रह्मा भी होता है क्या? तो भगवान बोले कि ठीक है अंदर बुला के लाओ। जब अंदर बुला के लाए तो देखा कि ब्रह्मा मीटिंग चल रहा था, जैसे प्रेसिडेंट्स मीटिंग चलता है ना इस्कॉन में, आरजीबी मीटिंग या फिर जीबीसी मीटिंग, ऐसे ब्रह्मा मीटिंग चल रहा था। सारे के सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा अपना अपना MIS एक्सेल शीट्स लेके आए थे प्रेजेंट करने के लिए, और वो भी पहुंच गए ब्रह्मा जी। देख के हैरान कि सबसे कम मुख वाला ब्रह्मा तो मैं ही हूं, 1000 मुख के, 64 मुख के, 100 मुख के ब्रह्मा भी विराजमान है। तब उनको समझ में आया, तो फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस प्रकार से, तो ब्रह्मा एक जीव जो कि चतुर्मुखी है, उन्होंने 14 भवन बनाए, 14 प्लैनेट, उसके अंदर एक प्लैनेट है पृथ्वी लोक। 14 प्लैनेट में इतने बड़े बड़े विशाल है, जो कि यहां से उनकी आयु जो ज्यादा होती है, 1000 वर्ष स्वर्ग में आयु, वो यहां पर 1000 वर्ष स्वर्ग में एक दिन। तो इस प्रकार से ऊपर के प्लैनेट्स में आयु भी ज्यादा होती है और लॉन्गर ड्यूरेशन भी होता है। हाँ, जैसे मून के ऊपर बताते हैं यहाँ से वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होता है। तो इससे अलग अलग प्लैनेट्स में अलग अलग टाइम स्पैन है, काल है, समय बताया गया है। तो एक जो पृथ्वी है, इस प्लैनेट के अंदर भी 7 द्वीप हैं, 7 द्वीप, 7 कॉन्टिनेंट्स। उस कॉन्टिनेंट्स के अंदर कितना, 75% पानी है और 25% खाली पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के ऊपर एक कंट्री है, ये अमेरिका, और इस कंट्री के अंदर एक सिटी है जहां पर हमारा ये मंदिर खुल रहा है, लॉस एंजेलिस। और इसमें एक स्ट्रीट है, ये 7 एवेन्यू, कौन सा स्ट्रीट था ये, एक स्ट्रीट, एक रोड है, एक ये गली है, और इस गली के अंदर एक ये चर्च है जिसको अभी हम मंदिर बनाने वाले हैं, ईसाई घर को मंदिर बना रहे हैं। तो इस मंदिर के अंदर भी अनेकों अनेकों लोग हैं, उनमें से तुम एक व्यक्ति हो। अब तुम कैसे समझ सकते हो कि अपनी स्थिति क्या है आपकी, आप खुद सोच के देखिए, कहां भगवान विष्णु और कहां हम। तो वैसे ही व्यक्ति के अंदर से समझ में आ जाएगा कि मैं तो भगवान के आगे एक चींटी के बराबर भी नहीं हूं, तो फिर उसको कभी भी अहंकार नहीं होगा। लेकिन हमें अहंकार क्यों होता है, क्योंकि हम शास्त्रों पे डाउट करते हैं, शास्त्र पर हमको भरोसा नहीं है। बताते हैं कि जो लोग शास्त्रों पे डाउट करते हैं या भक्तों पर डाउट करते हैं, भक्तों की वाणी पर डाउट करते हैं, क्या होता है कि एक बार वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि दो राक्षस थे, एक मतलब एक मादा राक्षस जिसका नाम था सतनखा, और एक राक्षस था जिसका नाम था दृष्टकेशु। दृष्टकेशु राक्षस जो था, और ये मादा राक्षस ने सतनखा, इन्होंने एक बच्चे को उत्पन्न किया, और ये बच्चे को छोड़कर राक्षस ऐसी प्रवृत्ति होती है जैसे आजकल भी हो गई है, राक्षसी प्रवृत्ति है। बच्चा उत्पन्न बाद में होता है, पहले माँ वापस रिज्वाइन कर लेती है अपने ऑफिस को ना, 15 दिन की छुट्टी लेती है, डिलीवरी करते हैं, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद बच्चे को दूध नहीं पिलाते, बॉटल से दूध पिलाते हैं और छोड़ के ऑफिस कमाना, पैसे कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि बच्चे को संस्कार दिया जाए, कृष्ण भावना भवित बनाया जाए। वो ये नहीं समझते कि कृष्ण ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये बोला है कि आप बच्चे को क्या करिए, कृष्ण भावना भवित बनाइए। मातृ न शिष्यात्, पितृ न शिष्यात्, गुरु न शिष्यात्, सृजनो न शिष्यात्। गुरु को गुरु नहीं होना चाहिए जब तक वो अपने डिपेंडेंट्स, अपने ऊपर जो उनके ऊपर निर्भर है, उन लोगों को कृष्ण भावना भवित ना बनाए। माँ बाप को माँ बाप नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने बच्चों पे जो निर्भर है उनको कृष्ण भावना भवित ना बनाए। तो राक्षस प्रवृत्ति है। तो ऐसे ही सतनखा और दुष्ट केशु अपने बच्चे को छोड़कर कहाँ चले गए, अपना विचरण करने लगे, मांसाहार सेवन करने, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए फिर दोबारा चले गए। तो वहां से शिवजी और पार्वती गुजर रहे थे, तो शिवजी और पार्वती जी ने देखा कि एक बच्चा तड़प तड़प के रो रहा है, तो उन्होंने बोला इसको तो भूख लगी है। तो शिव पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि भोले शंकर, हे आशुतोष, आप तो कृपालु हैं, इस पर कृपा करिए और इसको इतनी उम्र का कर दीजिए कि ये अपना लालन पालन पोषण खुद कर सके, स्वयं कर सके। तो शिव जी के आशीर्वाद से वो बच्चा 20 वर्ष का बन गया उसी वक्त। तो फिर उनको ये आशीर्वाद मिला कि राक्षसों के जब भी पुत्र होंगे तो तुरंत पैदा होते ही कितने बड़े हो जाएंगे, 20 वर्ष के हो जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे हृदय में जो ये डाउट है ना कि शास्त्र है, कृष्ण परम भगवान है, हम भक्तों पे भरोसा करें, ये जो डाउट है ना ये राक्षस प्रवृत्ति है। शास्त्र पे तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो डाउट करते हैं, एक बार अगर कोई शंका आई तो फिर वो तुरंत क्या हो जाएगी, 20 वर्ष की आयु इतना बड़ा स्पेस ले लेगी कि जितना कृष्ण भावना भवित हमने पिछले दिनों में अर्जित किया है, जप किया है, शास्त्र सुने हैं, कथा सुनी है, तुरंत कट करके स्पेस उसका वो राक्षस ले, वो डाउट ले लेगा और फिर क्या होगा, हम हट जाएंगे इस रास्ते से। धीरे 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 मंदिर आने की इच्छा समाप्त हो जाती है लोगों की। एक डाउट आ जाता है ना, किसी एक भक्त के आचरण पर भी डाउट आ गया तो लोग मंदिर आना बंद कर देते हैं। आप मंदिर कृष्ण के लिए आ रहे थे या भक्त के लिए आ रहे थे? आप मंदिर श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का श्रवण करने आ रहे हैं या भक्त से गप्पे लड़ाने के लिए आ रहे हैं? बोलते हैं हम लोग मंदिर में बोलते हैं ओनली जप नो गप, और कुछ जो लोग छोड़ के जाते हैं कहते हैं ओनली गप नो जप। जब जप नहीं करेंगे तो गप में मन आएगा, और गप में मन आएगा तो फिर डाउट आएंगे, बहुत सारे शक उत्पन्न होंगे हृदय के अंदर। कहते हैं केचित केवल या भक्ति या वासुदेव परायण। भक्ति का अंत मतलब ही ये है कि सिर्फ वासुदेव परायण और कुछ नहीं। वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभम। बहुत बहुत जन्मों में कहते हैं भवनान जन्म जन्मांते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभम। वासुदेव का अर्थ क्या है? वासुदेव का अर्थ जानते हैं क्या अर्थ है वासुदेव का? हाँ जी, कोई बताए वासुदेव? वासुदेव क्यों कहते हैं कृष्ण को? हाँ, वसुदेव के पुत्र वसुदेव। हाँ, और क्या है? हाँ, जो हर वस्तु हर जगह वास करते हैं वासुदेव, वो देवता जो हर चीज में वास करते हैं। वासुदेवम सर्वमिति, उस श्लोक में उसका मतलब भी दिया, वासुदेवम सर्वमिति, वही वासुदेव का मतलब भी वही है। वासुदेव जो हर चीज में विराजमान है, है ना? हम नरसिंह आरती भी गाते हैं, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यतो याम इततो नरसिंहा। जहां जहां देखें हर चीज में भगवान विराजमान है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच ले तो फिर उसके हृदय में कहां डाउट आएगा कि कृष्ण परम भगवान है कि नहीं है। एक बार सारे देवताओं ने बोला भगवान कृष्ण से कि भगवान आपने ब्रह्मा जी को तो सृष्टि का रचना में लगा दिया, जनरेशन जनरेटर, और विष्णु जी को आपने पालन में लगा दिया, और शिव जी को आपने इसका संहार करने में लगा दिया। तो गॉड का फुल फॉर्म है ना, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। जनरेशन किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। ऑपरेशन किसके पास? विष्णु जी के पास। और डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रक्शन शिव जी के पास। सारे देवताओं ने कहा भगवान अगर ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ करेंगे तो आप क्या करेंगे? तो भगवान बोले मैं तो बांसुरी बजाऊंगा खाली, मेरे पास और कोई काम नहीं है करने के लिए। चेयरमैन जो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, ओनर होता है, वो कभी कंपनी में काम नहीं करता, वो तो फ्लाइट लेके कभी ऑस्ट्रेलिया अमेरिका 3 महीने का ट्रिप, कभी अपने हेल्थ का इलाज चल रहा है, कहीं पर कैंप में गया हुआ है, वो यही करता है, आनंद में रहता है। श्री कृष्ण सदा आनंद में रहते हैं। वेणुम क्वांतम अरविंद दालताक्षम ब्रह्मा वसंतम असिताम बुद्ध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। हाथ में बांसुरी लेकर समुद्र बादलों जैसा नीला रंग जिसको करोड़ों करोड़ों कामदेव देखकर भी लजा जाए, कितने सुंदर कृष्ण हैं, ऐसे गोविंद का कौन भजन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो यहाँ पर जो हमारा इसमें पूछा गया विदुर जी के द्वारा प्रश्न कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी स्थिति कृष्ण से नीचे स्थिति है। तो फिर आगे हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से व्यक्ति को भगवान को समझना चाहिए। भगवान को समझने के लिए भाव भक्त के प्रति और शास्त्र के प्रति सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर भाव नहीं रहेगा भक्त के प्रति शास्त्र के प्रति, तो जो आज श्लोक में बताया गया अथा समस्त वस्तुओं के अंतिम विश्राम श्री कृष्ण है, तो विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम का अर्थ है जहां पर श्रम मेहनत को आराम मिल जाए, विश्राम बोलते हैं ना, आश्रम का भी वही अर्थ है, जहां पर श्रम को आराम मिले। तो इसीलिए ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो हमें समझना चाहिए कि खाली ऐसा नहीं कि कोई ब्रह्मचारी बनकर ही भक्ति कर सकता है या कोई सन्यासी बनकर ही भक्ति कर सकता है, जो भी व्यक्ति आश्रम में रहेगा वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो हमें समझना है कि किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम का क्या अर्थ है। गृहस्थ मतलब, गृह मतलब क्या होता है, हाँ जी, घर, जैसे बोलते हैं स्वर्ग ग्रह, ध्रुव ग्रह, अन्य ग्रह। ग्रह मीन्स रहने का स्थान, और स्थ गृहस्थ क्यों बोला गया, हाँ जी, जैसे हम बोलते हैं आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो लोग बोलते हैं स्वस्थ, एक्चुअली वो स्वस्थ नहीं होते हैं। स्वस्थ मतलब होता है आत्मा, स्वम मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। स्वस्थ अपनी आत्मा में जो हमेशा रहता है कि आई एम सोल नॉट अ बॉडी, हमेशा व्यक्ति सोचे कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं। स्वस्थ अपनी आत्मा में स्थित होना कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। लेकिन कोई भी अगर ऐसा सोचता है कि मैं शरीर हूं तो क्या हो गया, स्वस्थ नहीं है वो व्यक्ति, अस्वस्थ है वो व्यक्ति। ऐसे ही गृहस्थ जो घर में स्थित है और घर को क्या बना दिया उसने, आश्रम। जैसे आप जाइए हरिद्वार या ऋषिकेश या किसी भी तीर्थ स्थान में, तो बोलते हैं ये कैसा है, आश्रम है। तो आश्रम में से आवाज आती रहती है सदा, कीर्तन कथा की आवाजें आती हैं। ऐसे ही जिस घर के अंदर से मृदंग, करताल, कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र की आवाजें आए, वो घर है गृहस्थ आश्रम। लेकिन अभी हमने दो प्रकार के ग्रहों की चर्चा शिल प्रभुपात करते हैं, एक होता है गर्भ ग्रह, एक होता है गाल ग्रह। गर्भ ग्रह क्या है, जैसे मंदिर में जो ऑल्टर है इसको बोलते हैं गर्भगृह, जहां पर भगवान स्थापित किए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, उनकी वर्शिपिंग होती है, उसे कहते हैं गर्भगृह। लेकिन गालग्रह क्या है, तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं पर्पस में कि गालग्रह मतलब जब भक्ति ने, भक्त ने दीक्षा ग्रहण किया या गुरु की शरणागति ग्रहण, आश्रय ग्रहण किया, और उसके बाद जब उसको बोला गया 16 माला का जप करिए, चार पाप नियम का पालन करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, शास्त्रों का श्रवण करिए, तो उसको बर्डन लगता है, अरे ये सब करिए तो फिर नौकरी कब करिए, पैसे कब कमाइए, ये तो उसके मन में प्रश्न उठते हैं, शक आता है, और वो शक धीरे धीरे फिर क्या होता है, राक्षस के बच्चे की तरह बड़ा हो जाता है। उसको शक नहीं आना चाहिए, अगर ये सब करेंगे तो कृष्ण हमारी रक्षा करने के लिए सदा तत्पर है। योगक्षेमम वहामि हम, भगवान कहते हैं जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा, और जो नहीं है वो मैं आपको प्रदान करूंगा। इच्छा प्रदान नहीं करेंगे लेकिन जरूरत जरूर प्रदान करते हैं भगवान, नीड्स विल बी फुलफिल्ड बाय कृष्णा वर्शिपिंग। तो गालग्रह मतलब जब बर्डन समझा जाता है, हाँ सोचते हैं कौन सा वो गंदा दिन था जिस दिन मैं इस्कॉन केंद्र चला गया था, कौन सा वो दिन था ऐसा अनफॉर्चुनेट जब मुझे ये 16 माला का नियम पकड़ा दिया गया, रात के 12 बजे नींद आ रही होती है, मेरी माला छूट छूट जाती है, मैं सोचता हूँ 16 कब होंगी, 16 कब होंगी, 16 कब होंगी, ये शास्त्र पढ़े पढ़े तो मेरे को कितने दिन हो गए, बीच में एक वो बुक मार्क लगाया था, अभी 15 दिन हो गए, वो बुक मार्क वहीं का वहीं लगा हुआ है, उसी पेज नंबर पे रोज देखते हैं, आज तो पढ़ के ही रहूंगा, फिर खोलते हैं जैसे ग्रंथ वैसे फिर निद्रा देवी आ जाती है। निद्रा देवी तो कुंभकर्ण की बहन है, वो तो बोली है कि जिस प्रकार से जो भी व्यक्ति राम की भक्ति करेगा या कृष्ण की भक्ति करेगा तो वो राक्षस प्रवृत्ति है, मैं करने नहीं दूंगी, उसकी आंखों के पलकों के ऊपर बैठकर भारी कर दूंगी, उसको पढ़ने नहीं दूंगी, जैसे पढ़ेगा आदमी भारी होने लगेगी, और फिर मन अनेकों अनेकों प्रकार के प्लान बनाएगा, अरे कोई बात नहीं जब सो जाएगा आराम से, फ्रेश होकर उठेगा, तो जो बुद्धि में जाएगा वो कभी नहीं जाएगा। इस तरह से अनेकों अनेकों प्लान बनाएगा और फिर बंद कर कर सो जाएगा। दर्शन ने पवित्र कर है ही तुम्हारे गुण, दर्शन कर लिया बहुत हो गया और वो विश्राम में चला जाएगा। तो इस तरह से जब अगर हम ये प्लान्स बनाते रहेंगे, डाउट्स करते रहेंगे, तो भक्ति कब आएगी हमारे जीवन में? बहुत ही मुश्किल है कि हम भक्ति को प्रगाढ़ता से ले पाएंगे। लोग बोलते हैं कि क्या कृष्ण ही भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, इतिहास, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की चर्चा आती है हिस्ट्री में। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो बोलते हैं 80 किलो की तलवार लेकर हाथ में चलते थे। कितने किलो की? 80 किलो, 80 kgs। उठा सकता है कोई व्यक्ति आज के जमाने में? 40 किलो की गेहूं की बोरी उठाने को किसी को भक्त को बोल दो ना, तो उसके बैक एक होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी चीज, सेवा नहीं कर पाता व्यक्ति। 80 किलो की तलवार हाथ में, एक हाथ में, सिंगल हैंडेड। और बताते हैं 40 किलो का कवच, मतलब एक बॉडी वेट हो गया अपना। जो व्यक्ति 80 किलो के हाथ में तलवार ले उसका 200-250 किलो तो वजन होगा, और उसके ऊपर से 40 किलो का कवच, और 40 किलो के सोना, गोल्ड गोल्ड पहनते थे गहने, सोना 40 किलो का। अभी घोड़े की हालत कैसी होती होगी? घोड़े क्या, घोड़ा बोलता वो किसको बिठा दिया मेरे ऊपर? तो घोड़ा भी उतने पावरफुल होगा उस जमाने में, जो भी है। और एक एक व्यक्ति की, राजा की बताते हैं 200, कई कहो कि 500-500 रानियां होती थी, और हर एक के लिए। आज भी, आज राजस्थान में जाए ना, जैसलमेर किला है, जयपुर में आमेर पैलेस है, इतने सारे पैलेस हैं, लोग देख के आते हैं, फोटो खींचते हैं, उनकी बुद्धि ये नहीं आती। जब कृष्ण की चर्चा होती है और कहते हैं भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठाया, ये कैसे हो सकता है? 80 किलो की तलवार पृथ्वीराज चौहान उठा सकता है, लेकिन कृष्ण गोवर्धन नहीं उठा सकते। वो 500 रानियों के साथ रह सकता है, लेकिन कृष्ण 16108 के साथ नहीं रह सकते। ये है मानव की बुद्धि, राक्षसी बुद्धि, उसको कभी शास्त्र पर भरोसा ही नहीं होता है। हमें तुरंत क्या करना चाहिए? शास्त्रों पर भरोसा करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था, उसमें कह रहे थे कि एक औरत थी, उसके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो उसने वो क्या करते हैं, जैसे लिख देते ना स्ट्राइक के टाइम में, लिख देते हैं स्ट्राइक है या भूख हड़ताल है, तो ऐसे उसने लिख दिया कि मेरे पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, अब तो मैं सिर्फ कृष्ण की भक्ति से ही खाना पीना आएगा, जो भी आएगा मेरे ठाकुर जी सारा अरेंजमेंट करेंगे मेरे लिए। और बैठ गई अपना जप माला लेकर और क्या करने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपना भजन कर रही थी। तो वहां से एक नास्तिक व्यक्ति, जिसको भगवान पे कोई भरोसा नहीं, जो मानता है भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, वो नास्तिक वहां आ गया। और नास्तिक ने कहा, इसको बड़ा घमंड है अपने भगवान पर ना, अभी इसका घमंड तोड़ता हूँ, खाने पीने को कुछ नहीं है, वारे न्यारे हो रखे हैं इसके पेट का, जो है ना पूरा, वो क्या कहते हैं, रेड लाइट हो रखी है, खाने पीने की कोई इसके पास सामान वस्तु नहीं है, 7 दिन से इसका पूरा परिवार भूखा है, अभी लेके बैठ गई माला, हरे कृष्णा, बड़े आएंगे कृष्णा इसको खाना देने के लिए है। तो फिर उसने, नास्तिक ने क्या कहा, अपने दुकानदार को बोला कि काम करो, इसके लिए थोड़ा सा अनाज, थोड़ा चावल, थोड़ा दूध, चीनी, शक्कर इसको दो, भूखी मर जाएगी, और बजा के पूछना कि जब दे दे, जब वो खा ले तो पूछना पता है किसने दिया। तो बोला ठीक है। तो वो आदमी गया लेकर सारा सामान, नास्तिक ने भेजा था, बोले ये माता जी आपके लिए भेजा गया सामान। तो खुश हो गई, हो आ गया सामान, कुकिंग करा, खीर बनाया, भोग लगाया, खाया। तो फिर उस आदमी ने बोला जो देने गया था, बोला ये तो पूछ लो किसने भेजा है। कह रही है हाँ वो तो मुझे पता है ना, मेरे ठाकुर जी ने भेजा है। तो आदमी बोला नहीं नहीं, वो नास्तिक सुन रहा था खड़े होके बाहर, वो अंदर आ गया घर में, कह रहा तुम्हारे ठाकुर जी ने नहीं भेजा, मैंने भेजा है, मैंने। कह रहा यही तो मेरे ठाकुर जी, यही तो मेरे कृष्ण है, कि वो नास्तिक की बुद्धि में डालकर कि तेरे भक्त को जरूरत है, मेरी आवश्यकताएं पूरी करवा सकते हैं। मेरी आवश्यकता किसी नास्तिक की बुद्धि में डालकर भी पूरी करवा सकते हैं, तो तेरी बुद्धि में किसने डाला मेरे को जरूरत है? कृष्ण ने डाला। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सानविष्टम स्मृति ज्ञानम अपहोनम चा वेदस्य सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद अहम। सब कुछ जानने वाले भगवान ही है, और वेदों का सार क्या है? कृष्ण। लोग बैठ जाते हैं लेकर ऋग्वेद सामवेद, और हम जाते हैं ना भगवद गीता प्रचार करने, आपने वेद पढ़े हैं? वेद पढ़े हैं आपने? ऋग्वेद पढ़ा आपने? सामवेद पढ़ा? इतना मोटे मोटे ग्रंथ निकाल के लाते। जब भगवान कह रहे हैं वेदस्य सर्वम अहम एव वेद्यो, वेदों में जानने योग्य मैं हूं, खीर रखी हुई है और खीर के अंदर इलायची दाना पड़ा है, फ्रेग्रेंस उसी से आ रही है, एरोमा खुशबू इलायची से आ रही है। वो क्या करते हैं, इलायची को निकाल देते हैं, समझ के मक्खी है या कीड़ा है, और खीर खाते हैं।
तो ऐसे ही वो वेद खा रहे हैं जिसमें से कृष्ण को निकाल दिया उन्होंने, जो कि पूरी के पूरे वेद की खुशबू है। उस मकरंद चंदन बोलते हैं ना, तो सारा का सारा जो कमल रूपी खुशबू है वो कौन है? कृष्ण है। और वेद में से, गीता में से कृष्ण को निकाल कर कुछ मिलेगा? खाली दूध चावल मिलेगा, खुशबू नहीं मिलेगी, टेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को टेस्ट नहीं आ रहा, वेद पढ़ लिए, वेद ज्ञानी है लेकिन भक्त नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञानी बनना तो बहुत आसान है लेकिन भक्त बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भक्ति मैं किसी को देता नहीं हूँ। मुझसे जो कुछ भी मांग लो मैं प्रदान करूंगा, लेकिन भक्ति कभी प्रदान नहीं करता हूँ। जैसे छोटा बच्चा है, वो रोता है ना, तो 6 महीने का 8 महीने का, तो माँ जब कुकिंग कर रही हो तो रोता है, ओए ओए, तो माँ आती है छन 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 छन, चुप हो जाता है, रोना बंद कर देता है। फिर कुछ देर बाद फिर जोर जोर से रोता है, तो फिर माँ आती है, कहती है कि इसके ना दूध की बॉटल लगा, निपल लगा देती है, तो वो चूसता रहता है, चूसता रहता है, चूसता रहता है। फिर कुछ देर बाद फिर दोबारा रोने लगता है, तो फिर माँ आती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिखाती है, चे कुछ म्यूजिक दिखाती है, फिर बच्चा खुश हो जाता है, हंसने लगता है। कुछ देर बाद उसको खिलौना, छन छन, दूध, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या चाहिए? माँ चाहिए। जब माँ चाहिए तो फिर वो रोता है ना, फिर फैमिली का कोई भी मेंबर, परिवार का सदस्य, छन छन, दूध, खाने की कोई वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक गेम कुछ भी दे, उसको चाहिए माँ। और जैसे ही माँ उसको गोदी में उठाती है, बच्चा रोना चुप कर देता है, दूध भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सिर्फ माँ का गला सहारा मिला है उसको। इसी प्रकार से हमें भगवान कहते हैं, जो तुमको चाहिए मैं तुम्हें सब प्रदान करूंगा। और हम मांगते भी रहते हैं, अपनी लिस्ट लेके आ जाते हैं बड़ी सी, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दो, थोड़ा सा लगा देते पीछे से, या फिर बोलेंगे नहीं लेकिन मन में चलता है। जैसे ध्रुव महाराज के मन में चल रहा था, ध्रुव महाराज ने जब भगवान का भजन किया, 6 महीने क्रैश कोर्स किया था, बहुत लंबा नहीं, जैसे भक्ति शास्त्री होता है ना हमारा 4 महीने का, ऐसे ही क्रैश कोर्स किया उन्होंने, 6 महीने भगवान का भजन किया और बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रकार से जब उन्होंने 6 महीने भजन किया, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग भजन किया, ऐसा नहीं इधर उधर जैसे हम करते हैं भजन, जब करते हैं मन अनेकों स्थानों में घूमता है। बोले कहाँ था आपका मन? बोले सिर्फ भजन को छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर सब जगह था, सब जगह जाता है, कृष्ण में नहीं लगता मन। तो फिर इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, ध्रुव महाराज ने भगवान का भजन किया और भगवान स्वयं प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो भगवान, उन्होंने बोला, बोलो ध्रुव तुम्हारी क्या इच्छा है? तो बोले भगवान अभी तक तो मुझे क्या चाहिए था, कांच के टुकड़े चाहिए थे, अब मुझे जब हीरा मिल गया है आपके जैसा, तो मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो भगवान ने वहां बोला कि देखो ध्रुव, मैं अगर आज तुम्हारी मनोकामना पूर्ण ना करूं, जिसके लिए तुम आए थे, क्यों आए थे? क्योंकि तुम्हारी माता ने बोला था, सुनीति ने, कि देखो उत्तानपाद की गोदी में, अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते हो तो जाओ भगवान से मांगो, और अगर मैंने आज तुम्हें गद्दी प्रदान नहीं करी, उत्तानपाद से ऊंची गद्दी प्रदान नहीं करी, तो फिर क्या होगा? लोग सोचेंगे कृष्ण तो छलिया है, पहले बोलते हैं भजन करो भजन करो, फिर जब भजन करो इच्छा ही समाप्त हो जाती है, लोग बोलते हैं अभी तो हमारी इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी कोई भजन में आने के लिए, जैसे भगवान कहते हैं अर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, अगर आप कोई रंच मात्र इच्छा लेकर भी आए थे और आज आपने भजन शुरू किया, तो कल कृष्ण आपकी वो इच्छा पूरी जरूर करेंगे। क्योंकि भगवान ने ध्रुव महाराज को कहा कि जो भी अगर मानसिकता लेकर मेरे पास आता है, आज तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो लोग सोचेंगे कृष्ण का भजन करने से क्या होता है, गरीबी रहती है जीवन भर, पहले भजन करो उसके बाद इच्छा समाप्त हो जाती है, जो थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म हो गई। तो इस तरह से नहीं है, भगवान ने बोला जाओ उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, मैं तुम्हें 10,000 सालों का राज्य गद्दी प्रदान करता हूँ, 10,000 ईयर्स, 10,000 साल के लिए राज्य गद्दी प्रदान की है, और साथ में अपना शरीर त्यागने के बाद क्या मिलेगा तुमको? ध्रुव लोक, जो कि वैकुंठ लोक में एक लोक है, जो कि कभी प्रलय के समय भी नाश नहीं होता है, ऐसा लोक प्रदान किया, शाश्वत जीवन काल के लिए राजा बना दिया ध्रुव लोक का। सिर्फ क्या किया था? 6 महीने का भजन विश्वास के साथ भगवान पे। सुदामा ने क्या किया? पूरा जीवन नहीं मांगा, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कुछ भी नहीं चाहिए मुझको कृष्ण, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बार कृष्ण को थोड़ी सी भेंट ऑफर करी, ऑफरिंग्स, भोगा ऑफरिंग किया, तो क्या हुआ उसका रिजल्ट? द्वारकापुरी के समरूप सुदामापुरी भगवान ने बनाकर दे दिया उनको, एज इट इज सुदामापुरी, एकदम वैसे ही अगरू लगा है, सोने की दीवारें हैं, वही रानियां हैं, दासियां हैं, इतना सुंदर जल स्नान करने के लिए, हर एक चीज वहां पर प्रदान की। तो देखिए भगवान ऐसा कोई नहीं कह सकता कि श्री कृष्ण का भजन करने वाला जो है वो गरीब रहता है। होता यह है कि एक्चुअली श्री कृष्ण का जो भजन करता है वो चाहता नहीं है कि मुझे भगवान क्या दें, ये संसारी वस्तुएं दें। वो कहता है मुझे छन नहीं चाहिए, मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक गेम नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ तो दूंगा लेकिन भक्ति देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भक्ति देने के बाद मैं क्या बन जाता हूं, अहम भक्ता पराधीनो, भक्त के पराधीन होना पड़ता है, दास बनना पड़ता है उस भक्त का, अर्जुन का पैर खाना पड़ता है, मुझे लात खानी पड़ती है। बोलिए कोई व्यक्ति सेवा करे सीनियर बने टेम्पल का प्रेसिडेंट बन जाए, हाँ, और टेम्पल प्रेसिडेंट बनने के बाद में कोई भक्त बोले उससे, अरे हमारी गाड़ी चलाओगे जरा, ड्राइवरी करोगे हमारी गाड़ी, तो बनेगा कोई भक्त? बोलेगा अब मैं क्या हूँ, हेड ऑफ द टेम्पल हूँ, अब मैं हेड ऑफ द कम्युनिटी हूँ, अब मैं आपका ड्राइवर नहीं बनूंगा। लेकिन कृष्ण ऐसे हैं कि अपने अहम भक्ता अपराधीन हो, जिसने भक्ति करी उसके ड्राइवर भी बन जाते हैं। राइट में जाना हो तो कृष्ण भगवान के राइट में अर्जुन पैर मारते हैं और कहते हैं राइट चलो, लेफ्ट जाना हो तो लेफ्ट में पैर मारते हैं बोले लेफ्ट चलो, और रुकना हो तो पूरी पीठ पे पैर मारते हैं बोलते हैं रुक जाओ। इस तरह से कृष्ण है। और क्या करते हैं, यशोदा मैया कहती है मैं तुझे उखल से बांधना चाहती हूँ, तो बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंद बाबा कहते हैं लाला मेरे जूते उठा लाना, तो जाते हैं कृष्ण और जूते सिर पे रखकर लाते हैं। सोच के देखिए भगवान करेंगे ये सब चीजें, इसलिए भगवान कहते हैं मुझे तो तुम्हारा नौकर बनना पड़ता है, तो नौकर मैं, तुम मेरे नौकर हो लेकिन मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तो अगर हम साथ चाहते हैं कि कृष्ण हमें अपने सखा में, अपने गोप रूपों में, अपनी लीलाओं में सम्मिलित करें, कृष्ण लोक में हमें स्थान प्रदान करें, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, संसारी वस्तुओं को त्याग करके सिर्फ कृष्ण भक्ति चाहिए। और कृष्ण भक्ति पाने का सबसे सरल उत्तम रास्ता श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको समझना चाहिए कि जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने कहा हमको क्या बनना है, हम्बल डिवोटी बनना है, विनम्र भक्त। श्रील प्रभुपाद जैसा विनम्र भक्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक बार एक प्रभुपाद जी के भक्त थे, उन्होंने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका गए तो वहां पर बहुत सर्दी थी, तो लोग उनको डोनेशन में आकर सॉक्स शूज ये सब चीजें देके जाते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद अपनी धोती कुर्ता जो इंडिया से लेके गए और वो प्लास्टिक का जूता वही पहन के रखते थे हमेशा। तो भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं, आप हमारे गुरु हैं, परम गुरु हैं, हम आपको देना चाहते हैं। तो भक्तों ने दिया, तो श्रील प्रभुपाद जी ने जूता शूज पहनकर देखा तो उनको फिट नहीं आया, उन्होंने कहा ये मेरे साइज का नहीं है। तो जो भक्त लेके गए थे उन्होंने कहा कि काम करो तुम इसे रख लो, दान में तो आया है, मैं नहीं पहन रहा हूं तुम पहन लो। और ये कुछ मौजे भी हैं, क्योंकि भक्तों को सर्दी लगती है, वो फुल टाइम डिवोटी बन गए, मंदिर में रहते हैं, तो ये सॉक्स भी मेरे इस्तेमाल किए हुए मौजे हैं, ये रख लो। तो प्रभुपाद जी ने अपने मौजे दे दिए। अभी वो मौजे लेकर कहाँ आ गए, वापस आए, और एक कमरे में बैठकर वो भक्त बोल रहे थे सारे सॉक्स मैंने खुद ट्राई किए, मैं भक्तों को देने से पहले खुद ट्राई करता हूँ, जो मेरे आएंगे मैं वो रखूंगा, उसके बाद भक्तों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और इवन प्रभुपाद जी का दिया हुआ शूज, गुरु के द्वारा दी गई तदीय वस्तु, उनके चरण में लगाया गया शूज, जूता कहाँ पहन रहे हैं, अपने पैरों में पहनने का प्रयास कर रहे हैं, और पहना तो उनके भी फिटिंग नहीं आया, उनके भी पैर में सही नहीं आया। तो बता रहे थे उसके बाद में मुझे बहुत गिल्टी हुआ, ये मैंने क्या किया, मेरे पैर में आया भी नहीं और मैंने क्या किया, उसमें पैर डाल भी लिया। ऐसे हम भी करते हैं, गुरु के द्वारा हमको दिया गया स्थान है ये भक्ति, हाँ, और हम इसके अंदर जब थोड़ा सा ज्ञान हमारे अंदर आता है ना, नॉलेज जैसे बढ़ती है, तो हम गुरु का स्थान लेने का प्रयास करते हैं। जैसे वो भक्त बता रहे थे मैंने भी श्रील प्रभुपाद जी के शूज में पैर डालने की कोशिश करी, हाँ, तो हम भी ऐसे करते हैं, गुरु का स्थान लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन गुरु तो गुरु रहने वाले हैं। तब उनको बहुत गिल्टी हुआ और उन्होंने बोला इस शूज को कहाँ रखना चाहिए था, मंदिर में विग्रह के आगे एक बॉक्स में रखना चाहिए था जहां पर लोग आकर अपना सिर लगाएं, मुझे इन जूतों को सिर पे रखना चाहिए था, मैंने कहाँ रख लिया, पांव में रख लिया। ऐसे ही हम गलती करते हैं कि भगवान कृष्ण या उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके आदेशों को कहाँ रख लेते हैं, इग्नोरेंस में रख लेते हैं, त्याग देते हैं उनको, शिरोधार्य मतलब सिर के ऊपर धारण करना चाहिए हमेशा। और उनका क्या आदेश होता है कि हमें क्या बनना है, विनम्र बनना है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देने के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ भक्त बाहर खड़े होकर गप्पे कर रहे हैं प्रवचन के दौरान, भागवतम क्लास की कक्षा में ना आकर वो बाहर अपने आनंद में बातें कर रहे हैं। तो कुछ भक्तों ने पूछा उनसे जो क्लास सुन रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ये भक्त क्यों नहीं अंदर आते हैं, और यहाँ तो छोड़ दो, ऐसे भी बहुत सारे स्थान हैं जहां पर इतनी इतनी भीड़ लगी हुई है लेकिन उनकी फिलॉसफी समझने योग्य नहीं है। वहां पर कृष्ण को हटाकर ब्रह्मा को भगवान बताते हैं, कहीं शिव को भगवान बताते हैं, कहीं पर भगवान को निराकार बताते हैं, फिर भी इतनी इतनी भीड़ लगी हुई है लेकिन जहां कृष्ण जो गोविंदम आदि पुरुष हैं उनको सुनने के लिए कोई नहीं आता, ऐसा क्यों? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जहां पर ओरिजिनल गोल्ड नहीं मिलता ना, जहां पर नकली सोना मिलता है, फेक गोल्ड, नकली ज्वेलरी मिलती है ना, आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट आता अखबारों में 40 रुपए में गहना पाइए, सोने का सेट, वो देखने में सोने का लेकिन 40 रुपए का है, तो वह माताओं की भीड़ लग जाती है, अरे हमें भी देना, हमें भी देना, एक दिन तो काम चल जाएगा, भीड़ लग जाती है नकली सेट के लिए, बहुत जाते हैं ना माता जी, नकली सेट क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, यस आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने के लिए भीड़ लग जाती है, लेकिन डायमंड की दुकान है ना, हम गए थे एक बार डी डमाज पे मिलने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए, मैं बैठा रहा वहां पर 4 घंटे तक चर्चा रही, कोई कस्टमर नहीं आया वहां पे, मैं सोचा चलता कैसे है, तो मैंने पूछ ही लिया यहाँ कोई आया नहीं 4 घंटे में, चलता कैसे है? किसी दुकानदार पे जाते हैं फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में, भीड़ रहती है, बात करने का टाइम नहीं होता, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए भीड़ है, लेकिन डायमंड खरीदने के लिए, बोला हमारा अगर 2 दिन में एक कस्टमर भी आता है ना तो हमारा पूरे महीने की इनकम हो जाती है। इसी तरह श्रील प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन की फिलॉसफी ऐसी है कि अगर पूरे जीवन में कोई एक भी भक्त बन गया ना तो बस मेरा कल्याण हो जाएगा। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि हम भक्त को प्रयास करना है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, एक भक्त बनाना है, अगर ये हमारे मन में अभिलाषा रहेगी ना तो फिर अनेकों लोग अट्रैक्ट होते हैं अपने आप ही, क्योंकि कृष्ण सर्व आकर्षक है तो उनके भक्त भी सर्व आकर्षक बन जाते हैं। तो हमको क्या है, फिलॉसफी को लेना है अपने अंदर, और ये नहीं सोचना है कि भीड़ इकट्ठी कर लूं, नंबर गेम खेल लूं, मैं भी बड़ा भक्त बन जाऊं, मैं भी भीड़ इकट्ठी कर लूं, ये नहीं सोचना है। तो प्रभुपाद ने कहा आई डोंट नीड वेरियस ट्विंकलिंग स्टार्स, आई नीड वन शाइनिंग मून, मुझे बहुत चमकते सितारे नहीं चाहिए, एक ही चंद्रमा काफी है शीतलता प्रदान करने के लिए। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी में तो बहुत भीड़ रहेगी, बाहर अनेकों संस्थाओं में भीड़ रहेगी, टेलीविजन चैनल में भागवत कथा चलती है, पंडाल में अनेकों लोग देखेंगे आप, हजारों लोग, 10,000-15,000 लोग बैठे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं, और बाहर निकल के बाद में आधे आधे हो जाते हैं, नो राधे राधे, आधे आधे, अपनी अपनी चीजें चलाएंगे, अपने अपने अनुसार जीवन जिएंगे, जैसे बोलते ना आता है इसमें चेतन चरता में, इसमें उदाहरण आता है, नेक्ट ऑफ डिवोशन में भी आता है, अर्ध क्या मुर्गी क्या बोलते हैं, अर्ध कुटिका न्याय, अर्ध कुटिका न्याय, उसमें क्या है, मुर्गी आगे से दाना खाती है और पीछे से अंडा देती है, तो लोग एक व्यक्ति थे उन्होंने सोचा कि इस मुर्गी को काट देते हैं क्योंकि आगे वाला खर्चा करती है पीछे वाला पैसा देती है, आगे का काट देंगे तो खर्चा खत्म हो जाएगा, पैसा पैसा आएगा, तो काट दिया तो अंडा आएगा क्या? ऐसे हम भी करते हैं, पहले वाले में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर मा तो संगोस्तो कर्मण्ये, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ऑटो वाले से पूछो, बस वाले से पूछो, हमने भी गीता पढ़ी है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, ये है गीता का ज्ञान, लेकिन जब आती है बात सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षाश्मि मा शुच, तब करता है व्यक्ति, अरे ये नहीं, आधा काट दो, आगे वाली गीता ठीक पीछे वाली खराब, अर्ध कुटिका न्याय। तो इसी तरह से हम जीवन में आधी आधी, नो राधे राधे, ओनली आधे आधे, सिर्फ आधा आधा जीवन जीना चाहते हैं, आधा जो पसंद वो मेरा, जो नहीं पसंद वो तुम्हारा, तो ऐसे नहीं चलता, वी हैव टू एक्सेप्ट इन फुल, पूरा लेना है, इसीलिए पूरी खाते हैं ना सारे भक्त, पूरी पूरी मतलब पूरा पूरा लो, और फिर जाते हैं जगन्नाथ पुरी तो वहां पे भी पूरे पूरा पूरा लेना है सब कुछ, राधा कृष्ण आधा आधा नहीं पूरा लेना है। और भगवान ने कहा कि कलयुग में आधा आधा बांटने में कहीं कृष्ण और राधा रानी को अलग अलग ना कर दें, इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा कृष्ण नाई अन्य श्री कृष्ण चैतन्य, बोले एक विग्रह में आऊंगा कम से कम, फिर तो आधा आधा का इनका भाव खत्म हो जाएगा, अभी भी लोग फिर भी आधा आधा करते हैं, राधा रानी मेरी, कृष्ण तुम्हारे, या फिर राधा राधा से प्रेम करेंगे कृष्ण से नहीं करेंगे। और भजन कैसे गाते हैं बोलना तो नहीं चाहिए व्यास आसन पे, लेकिन आजकल भजन ऐसे चल रहे हैं, राधा ने मारी मिस कॉल, कृष्णा बोले हेलो हेलो, ये क्या है भजन, राधा ने मारी मिस कॉल, कृष्णा बोले हेलो हेलो, ये क्या चल रहा है संसार में। जा रहे थे हम एक बार तो ऑटो वाले ने गाना लगा रखा था, मैंने कहा ये क्या बजा रहे हो, और बोलते हैं मीरा का भी श्याम देखो, राधा का भी श्याम, मीरा भाई भक्त है और राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, कोई ज्ञान ही नहीं है लिखने वाले को, लोग भी भजन यही वाले गा रहे हैं, तो हम भी अगर यही भजन गाएंगे ना
तो आप देखिए हम असलियत में कृष्ण प्रेम जागृत नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। कभी कृष्ण को जो हमारे श्लोक है उसका आश्रय नहीं ले पाएंगे कभी भी। कभी ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम है नहीं समझ पाएंगे। हमें इन सबको त्याग कर सिर्फ एक चीज को अपने जीवन में धारण करना है, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गर्ग संहिता में एक कथा आती है, वो सुनाकर समाप्त करूंगा मैं। वैसे तो बहुत कुछ है भगवान कृष्ण के बोलने के लिए। भगवान के जो शेष नाग है उनके अनंत मुखों से वो अनंत गुण वर्णन करते हैं, फिर भी कर नहीं पाते हैं, अभी तक हुए नहीं, अनेकों वर्णन चल रहे हैं। भागवतम कक्षा यहाँ फरीदाबाद में इतने दिनों से चल रही है, हर रोज स्पीकर उसमें वर्णन करते हैं, लेकिन हर बार सुनने में क्या लगती है, रिफ्रेश्ड फ्रेश लगती है। तो इस प्रकार से गर्ग संहिता में कथा आती है कि दुर्वासा मुनि जो थे उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण को मिट्टी में खेलते हुए देख लिया। लाला क्या कर रहे हैं, मिट्टी की लीला कर रहे हैं, मिट्टी में लेटे हैं, लोटपोट हो रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी वो ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। तो दुर्वासा ऋषि को लगा कि ये तो ब्रह्मांड नायक कृष्ण नहीं हो सकते, ये जिसका नाम कृष्ण है ना, जैसे हम अपने बच्चे का नाम रख लेते हैं कृष्ण वासुदेव कन्हैया, तो एक्चुअली इन्होंने नाम रखा हुआ है, ये वो कृष्ण नहीं है जो ब्रह्मांड के सृष्टि के पदगम है, आदि अनादि कृष्ण नहीं है। ईश्वरम परम कृष्णम सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, ये वो नहीं है। तो इस तरह से उनको जब भाव आया तो उन्होंने क्या किया, इतना जब सोच रहे थे इतने देर में कृष्ण भगवान ने उनको क्या कर लिया, अपने अंदर पेट में ले लिया। जब कृष्ण भगवान ने उनको पेट में ले लिया, खड़े होकर देख रहे हैं, और लाला ने क्या किया, मिट्टी खेलते खेलते ऐसे कर लिया और दुर्वासा मुनि पेट में चले गए। अभी पेट में गए हैं तो वहां पर क्या देख रहे हैं कि हर जगह पानी ही पानी है, पूरा जलाग्रह जल ही जल भरा हुआ है, और एक पत्ता है, उस पत्ते के ऊपर कृष्ण अपने अंगूठा चूस रहे हैं, अंगूठा चूस रहे हैं। और फिर देखकर अभी भी उनको लगता है, अरे ये तो नहीं हो सकता, ये तो कोई छोटा सा बालक है जिसके माँ बाप ने उसको क्या किया है, त्याग दिया है। इस तरह से जब वो सोच रहे थे इतनी देर में फिर से कृष्ण लेटे लेटे क्या करते हैं, अंगूठा निकालते हैं, फिर से भगवान के पेट में चले जाते हैं। और जब इस बार उनके पेट में जाते हैं तो वहां देखते हैं अनंत कोटि भगवान कृष्ण से बलराम प्रकट हो रहे हैं, बलराम से चतुर्व्यूह विष्णु संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इस प्रकार से निकल रहे वासुदेव, और फिर संकर्षण से दोबारा महाविष्णु प्रकट हो रहे हैं, और फिर महाविष्णु से फिर दुत्य चतुर्व्यूह संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, और फिर संकर्षण से सदाशिव और महाविष्णु निकल रहे हैं, महाविष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और उस ब्रह्मांड में एक है ये वाला ब्रह्मांड जिसके हम जिसमें हम रहते हैं, जिसमें कृष्ण ने लीला करी, और उसमें एक पृथ्वी लोक है, जिस लोक में एक धाम है वृंदावन धाम, और उसमें क्या कर रहा है एक बच्चा, क्या कर रहा है मिट्टी में खेल रहा है। तो उनको यहाँ पर जाकर डाउट उनका क्लियर हुआ, तो फिर उन्होंने जब आंखें खोली तो फिर भगवान ने उनको वोमिट कर दिया ऐसे करके। तो फिर वो वापस बाहर निकल के खड़े हुए और फिर दंडवत प्रणाम किया कि हाँ तुम ही हो, उन्होंने भगवान ने वहां स्थापित किया और कोई नहीं है, इकला प्रभु कृष्ण आर सब भृत्य, सिर्फ मैं हूं भगवान, बाकी सब मेरे दास हैं। तो इस बात को वहां पे उन्होंने स्थापित किया है भगवान ने उस लीला के अंदर। तो हमें भी डाउट को अपने मन में नहीं लेके आना है कि कृष्ण ही भगवान है। अड़ोस पड़ोस में देवी के जगराते में बुलाते हैं, कभी साईं बाबा के जगराते में बुलाते हैं, उनकी कथाएं सुनकर हमारे मन में कई बार शक आता है, क्या मैं जो सुनता हूँ मंदिर में फरीदाबाद इस्कॉन केंद्र में, क्या सच में कृष्ण भगवान ही है? अगर है तो फिर वो नेपाल में जब इतने कष्ट होते हैं तब क्यों नहीं आते हैं? तो इस तरह से हमको नहीं सोचना चाहिए। नेपाल में जो होता है या जो सुनामी आती है या बॉम्ब ब्लास्ट होता है या ट्रेन में एक्सीडेंट होते हैं, उसमें कृष्ण का कोई रोल नहीं है। कृष्ण ने तो प्रकृति को उस रोल के लिए छोड़ दिया है। जिस प्रकार से अगर कोई दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाए रोड के ऊपर और पुलिस वाला बोले तुम्हें चालान भरना पड़ेगा और तुमको बयान मतलब पैसा देना पड़ेगा, पैसा भरना पड़ेगा और तुमको जेल जाना पड़ेगा, तो इसमें यह नहीं कि वो एक को प्रेम करता है या एक को नहीं करता है, वो तो निर्णय लेता है उसके कर्मों के अकॉर्डिंगली, जैसा कर्म वैसा भरना पड़ेगा, एज यू सो सो यू रीप, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, सिंपल फिलॉसफी, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। वो उसमें कृष्ण का कोई रोल ही नहीं है। उन्होंने इस रोल के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और अनंत कोटि 33 करोड़ देवी देवताओं को विराजमान किया, जाओ देखो कौन कैसा कर्म कर रहा है और उसके कर्म के अकॉर्डिंग उसको सजा दो। तो कुछ कर्म का फल हमको तुरंत मिलता है और कुछ कर्म का फल हमको देर से मिलता है, है? जिसको जैसे ATM में कार्ड डाला तुरंत पैसे आ गए, चेक डाला तो 3 दिन बाद आता है।
तो कुछ कर्म हमने कभी किए होंगे उनका फल हमें आज मिल रहा है, कुछ कर्म हमने अभी किए उनका फल हमें आज भी मिल जाता है, कुछ कर्म हमने किए तो उसका हमको मिलता है, कुछ कर्म हमने साथ मिलके किए हैं तो सबको मिलेगा। जैसे एक मुर्गे को अगर काटना है, उसको काटना चाहेंगे तो जिसने चाकू बनाया, जिसने मुर्गा बनाया, जिसने ट्रैवल, जो जिसने ट्रांसपोर्ट किया, जिस जिस व्यक्ति ने उस गलत कर्म में सहयोग किया, उन सबको क्या मिलेगा? सामूहिक कर्म, कलेक्टिव कर्मा फिलोसफी के अकॉर्डिंगली सामूहिक कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए जब इस प्रकार के लोग एकत्रित होते हैं तो सुनामी आती है, नेपाल में भूकंप आते हैं, वही लोग मरते हैं जिनके ऊपर कर्मा फिलोसफी चल रही है। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान से पूछ लिया और गंधारी ने भी, ऐसा क्या किया भगवान हमने जो कि हमारे 100 पुत्र मारे गए? तो भगवान ने बोला धृतराष्ट्र को कि तुमने पूर्व जन्म में आज से 50 जन्म पहले 100 अंडे एक चिड़िया के मार दिए थे। तुम एक शिकार खेलने गए, जब तुम शिकार खेल रहे थे उतनी देर में एक चिड़िया आई, उसने तुम्हारे शिकार को डाइवर्ट कर दिया, अलग कर दिया और शिकार नहीं मरा। तो क्रोध में आकर तुमने क्या किया, उस चिड़िया के जितने भी उस जगह अंडे थे 100 अंडे अलग अलग पेड़ों से उठाकर पूरे समाज को, उस चिड़िया के पूरे समाज को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो 100 अंडे मारने का फल तुमको मिला। और गंधारी, तुम किसी समय में आज से इतने जन्म पहले एक छोटी सी कन्या थी, 7 या 8 वर्ष की रही होंगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितनी उम्र थी, और समुद्र के किनारे कछुआ जो था वो अंडे देके गया था। कछुआ किस प्रकार अंडे देता है? कछुए ने अंडे दिए, उसके बाद फिर वो मादा कछुआ पानी में चली जाती है और अपने नेत्रों से उस अंडों को गर्म करती है, बच्चों को पड़ा करती है। इसी प्रकार बताते हैं गुरु जो होता है ना, वो दीक्षा प्रदान करने के बाद वापिस चला जाता है और अपने नेत्रों से, ध्यान से अपने भक्तों को, अपने आश्रित जनों को गर्म करता है, उनको पकाता है। तो इस तरह से हम भी गुरु के साथ में ना रहकर भी उनके इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो करें तो दूर रहकर भी हम पक सकते हैं, पक्के भक्त बन सकते हैं, पका हुआ भक्त बोलते हैं ना, मैच्योर डिवोटी बन सकते हैं। तो इस तरह से वहां पर उन्होंने वर्णन किया कि इन्होंने क्या किया, कछुए के जो अंडे थे इनको बड़ा मजा आ रहा था, ये बच्ची थी छोटी सी, तो एक अंडा उठाया, हवा में उछाला, नीचे गिरा, टपाक, बड़ी खुशी, वाह वाह मजा आया, फिर उछाला, फिर उछाला, फिर उछाला, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। तो इन्होंने बचपन में 100 अंडे कछुओं के मार दिए। तो ऐसी प्रकृति का, प्रकृति इस तरह कर्म करती है। उसने एक स्त्री ढूंढी गांधारी जिसने 100 का उस पे पाप है, और ऐसे धृतराष्ट्र ढूंढे जिनके ऊपर 100 का पाप है, और दोनों को हस्बैंड वाइफ बनाया और उसके बाद उनका फल भोगने के लिए 100 बच्चे उनके मारे। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि अगर 100 बच्चे मारने थे और मैंने 50 जन्म पहले किया तो आपने उसके अगले जन्म में मुझे फल क्यों नहीं दिया, पाप का फल? तो भगवान ने बोला क्योंकि 100 पुत्र होने के लिए पहले उतने पुण्य भी तो अर्जित करने पड़े, तो 50 जन्मों में तुमने जो पुण्य अर्जित किए उस फल ये मिला कि 100 पुत्र जन्मे, और फिर जो पाप तुम्हारा पेंडिंग चल रहा था वो पाप तुम्हारा घटा कि 100 पुत्र मारे भी गए। तो इस तरह प्रकृति के जो नियम है उनके हम अगेंस्ट उन सोच नहीं सकते कि ये गलत है, ये सही, ये गलत है, ये सही। हमको तो सिर्फ समझना चाहिए जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो कुछ कृष्ण करते हैं वो हमारे लिए अच्छे के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न नहीं है? हाँ जी पूछिए। एक छठाई भाग भोग भोगना पड़ता है चाकू बनाने के बाद में। इग्नोरेंट में नहीं रहना चाहिए ना, अविद्या, अविद्या में नहीं, इग्नोरेंस रहने नहीं रहना चाहिए, अज्ञानता में, इसलिए ज्ञान में रहना चाहिए कि मैं जो बना रहा हूँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसका एंड लास्ट रिजल्ट क्या है, आखिरी में किस काम में आएगा। चाकू बना के डॉक्टर को दिया, सर्जरी करने का काम आ रहा है, ठीक है, लेकिन चाकू बनाकर चोर खरीद के ले गया तो हमें देखना चाहिए, ऐसी स्थान पर बेचना चाहिए जहां पर इस तरह के कार्य में इस्तेमाल हो, बहुत सारे दिमाग लगाना चाहिए। इसलिए भगवान ने बुद्धि दी है, और भगवान का जब भजन करते हैं तो और बुद्धि प्रदान करते हैं। हाँ, बोला गया है ना कि ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामोप्यन्तिते, जो भजन करेगा उसको मैं बुद्धि भी दूंगा कि किस तरह से वो अपने कार्य क्षेत्र का निर्माण करे कि वो गलत काम ना करे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? तुम ये समाप्त करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, पंच तत्व गौणिताय की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रीमद भागवतम ग्रंथ राज की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे।